मेरे नौजवान दोस्तों नमस्कार। आज 21 अप्रैल 2017 है, दिन है शुक्रवार और मित्रों आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और सच पूछे तो शनिवार और रविवार के स्वागत को भी मैं आज के अपने ही स्वागत में शामिल करता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक सूचना भी है, कोई बात नहीं अगर डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है लेकिन कुछ दूसरी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको शनिवार को मिलती हैं और इतनी ज्यादा मिलती हैं कि वो रविवार के आपके खालीपन को भरने की पूरी क्षमता रखती हैं। तो दोस्तों वो सूचना ये है कि डेली ऑडियो तो खैर नहीं आएगा लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स आपको एज इट इज शनिवार को मिलेंगी और प्रेस क्लिपिंग्स के साथ ही साथ आपको कुरुक्षेत्र और योजना हिंदी और इंग्लिश दोनों के आर्टिकल्स मिलेंगे, यानी कि टोटल 4 आर्टिकल। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो हिंदी में भी होते हैं और फिर मैं उसका इंग्लिश वर्जन भी प्रोवाइड कर देता हूं। इसका मतलब है कि हो सकता है कि टॉपिक के रूप में आपको हिंदी इंग्लिश का सेम हो और कुरुक्षेत्र का भी हिंदी इंग्लिश का सेम हो, यानी कि 4 आपको आर्टिकल्स तो मिल रहे हैं लेकिन वो केवल 2 टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मित्रों। उसकी इंपॉर्टेंस को देखकर मैं ऐसे निर्णय लेता हूं। इसी के साथ ही आपको वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और साथ ही जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस अवेलेबल कराया जाएगा। तो मित्रों ये कुछ सूचनाएं थी, अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर। फ्रेंड्स कल के रेडियो समाचार में अगर सच पूछिए तो भले ही छोटी छोटी खबरें हों और अपने आप में वो इंडिपेंडेंट टॉपिक की ताकत न रखती हों लेकिन कंटेंट के रूप में उनका काफी महत्व मुझे जान पड़ता है। एक खबर आपने शुरू की सुनी कि किस तरह से चीन ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो 6 स्थान है उनका नामकरण कर दिया, अपनी तरफ से कर दिया, राज्य हम में है, वो हमारा है और उसका नामकरण वो बैठा हुआ कर रहा है। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से चीन काफी कुछ थोड़ा सा बौखलाया हुआ सा है, परेशान सा है और साम्राज्यवादी जो आकांक्षाएं हैं उसकी कुछ ज्यादा ही अव्यवहारिक स्तर पर बढ़ती चली जा रही हैं और इसके बारे में हम लोग बातें कर भी चुके हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया भी था कि जो चीन है और भारत के बीच में एक तरीके से जो विवाद की स्थिति बनती जा रही उसको देखते हुए इस बार जो अक्टूबर में एग्जाम होने मेंस में, तो मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हो सकता है। तो मित्रों इसके बारे में खासकर 6 स्थानों के नाम में जो उसने अपनी तरफ से दूसरे की चीज को अपनी तरफ से बदल दिया है उसके बारे में तो इंडिपेंडेंटली कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन एक कंटेंट के रूप में यह भी है कि किस तरीके से चीन जबरदस्ती के हस्तक्षेप करके एक जो एक वार्ता की स्थिति होती है, एक जो सद्भाव का माहौल होता है उसको लगातार तितर बितर करने की कोशिश कर रहा है। तो बस इस कंटेंट के रूप में आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत और चीन के जो संबंध हैं, खासकर उसमें जो विवादास्पद बिंदु हैं, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं है मैकमोहन रेखा को लेकर के, जिसके वजह से अरुणाचल प्रदेश का मामला उठता है, तिब्बत के लिए वो जबरदस्ती वो किया हुआ, जबकि भारत ने साफ कह दिया कि भैया तिब्बत आप कहीं, हम तो कहीं कहीं नहीं रहे कि तिब्बत को अलग से राज्य मानो या अलग से देश दो। तो जो भी विवादास्पद मुद्दे रहे हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एक जो दूसरी बड़ी जो खबर थी लेकिन केवल कंटेंट के फॉर्मेट में मित्रों, वो ये थी कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो ATS टीम है, जिस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको रट जाने चाहिए। ये बार बार आप देखते हैं ना, बार बार आपको पढ़ने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, न्यूज में भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका एब्रीविएशन का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन कम से कम आपको अपने आप को इस तरह से तो इक्विप्ड कर ही लेना चाहिए कि यदि आप एग्जाम में कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें उस दल का, संस्था का सही सही नाम लिख सके। उससे क्या है कि उत्तर में थोड़ा सा एक वजन आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जो एटीएस टीम है, पांच राज्यों की पुलिस की मदद से आपने देखा है कि 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, और उसमें यह माना जा रहा है कि ये सब आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे। दोस्तों ये भी अब एक खबर है और आप मतलब कंटेंट है, और आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले लगभग 6 महीने से तो स्पेशली आईएसआईएस के लिए काम करने वाले इस तरह के संदिग्ध आतंकवादी भारत में काफी गिरफ्तार किए गए हैं, और उनकी गिरफ्तारी उत्तर भारत में भी हुई है, दक्षिण भारत में भी हुई है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका जो नेटवर्क है वो भारत में भी धीरे धीरे फैल रहा है। भारत इस मायने में अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित मानता था, आश्वस्त कि अभी आईएसआईएस का कोई ऐसा नेटवर्क भारत में नहीं है, लेकिन अब उसकी इस आश्वस्ति को धक्का पहुंचा है और अब लगने लगा है कि नहीं, यहां भी वो अपने हाथ पैर फैलाने में सफल हो गया है। अब मैं इसके टॉपिक पर आता हूं। ये टॉपिक बेसिकली दोस्तों नो डाउट कि आतंकवाद से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और जब हम आईएसआईएस जैसे संगठनों को देखते हैं तो फिर वो आतंकवाद केवल भारत तक सीमित नहीं रह जाता, वो वैश्विक स्तर का हो जाता है। और अगर आप पिछले अनसॉल्व्ड पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि आतंकवाद एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर साल एक क्वेश्चन तो है ही, डायरेक्ट एक क्वेश्चन, लेकिन जो दूसरे क्वेश्चंस भी आए हैं, एक दो क्वेश्चंस, वो सीधे सीधे आतंकवाद पर ही तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आतंकवाद से रिलेशन है। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत को आतंकवाद के कारण सीमा प्रबंधन में कठिनाइयां हो रही हैं, इसके लिए तो अब है तो वो सीमा प्रबंधन पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी को लेकर के प्रश्न पूछा गया, साइबर सुरक्षा को लेकर के, तो साइबर सुरक्षा में भी आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ ही मामला है। भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब हो रहे हैं आतंकवादी गतिविधियों के कारण, तो वहां भी आतंकवाद है, लेकिन भले ही वो पाकिस्तान और भारत के संबंधों को लेकर के बात की गई हो, लेकिन केंद्र में आतंकवाद ही वहां आपको दिखाई देगा। और पिछले साल 2016 के मेंस में आपको मालूम है कि ये जो सिक्योरिटी और टेररिज्म इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर के सिलेबस में आपके हैं, उसमें देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में एक निबंध का विषय हो सकता है। वो क्वेश्चन है देखिए जनरल स्टडीज के पेपर थर्ड 2016 में, पिछले कुछ दशकों से आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में उभर रहा है, उपर्युक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। टेररिज्म इज इमर्जिंग एज ए कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, एनालाइज द एबव स्टेटमेंट। ये प्रश्न पूछा गया है मित्रों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आतंकवाद टॉपिक है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक दो क्वेश्चंस इससे आते हैं, और वो भी मेंस में आते हैं जो सबसे चैलेंजिंग है। दोस्तों इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को इस बात पर जोर देता हूं कि प्लीज जो अनसॉल्व्ड पेपर है आप लगातार उसके संपर्क में रहिए। अनसॉल्व्ड पेपर से आपको कभी भी अपने को विड्रॉ नहीं करना, मतलब एक दिन में कम से कम एक बार तो आपको अनसॉल्व्ड पेपर और मैप उलटना ही चाहिए। हाँ, जिस टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हैं आप उसी टॉपिक को वहां देखें। मैं पूरे अनसॉल्व्ड पेपर को पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे मैप को देखने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी जरूरत की चीजों को तो आप स्पॉट कीजिए ही कीजिए। तो दोस्तों ये दूसरी खबर थी। तीसरी खबर सीबीएसई के स्कूल को लेकर के, देखिए अपने न्यूज में ये बात थी, और अगर आपने एनडीटीवी चैनल्स अगर आप देखते हो तो उसमें रवीश जो प्राइम टाइम में लगातार स्कूलों के बारे में बातें कर रहे हैं, डिस्कशन हो रही है, बहस कराई जा रही है कि कैसे जो स्कूल हैं हमारे वो एक तरह से व्यावसायिक संस्थान बन गए हैं, किस तरीके से वो पेरेंट्स को का शोषण करने में मतलब बेशर्मी के हद तक आगे चले गए हैं, चाहे फीस बढ़ाने के मामले को लेकर के हो, अब वो जूते चप्पल मोजे टाई बेल्ट क्या क्या नहीं बेच रहे हैं, अगर ड्रेस भी बेच रहे हैं तो पांच पांच तरह के ड्रेस हैं और वही वही वहीं से आपको लेना होगा, मार्केट में जो चीज 50 रुपए की मिल रही है उसको वो 150 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब अगर आप उस सुने उस बहस को तो सच में लगेगा कि शिक्षा जो हमारे लिए एक श्रद्धा का केंद्र होता है, शिक्षक जो हमारे लिए एक तरह से पूजनीय होता है, स्कूल जो एक प्रकार से हम मंदिर जैसा मानते हैं, दोस्तों हम लोगों की तो कम से कम भावना यही रही है और आज भी हम लोग उसी भावना को जीते हैं। आप में से भी जो नौजवान साथी हैं कुछ इसी तरह की भावनाओं को लेकर के आते हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ जो आप सब स्टूडेंट बनकर आते हैं तो लगभग इसी भावना का पालन करते हैं। तो हम जैसे लोग जब इन घटनाओं को सुनते हैं, देखते हैं, सच्चाइयों को जानते हैं तो पता नहीं क्यों मन एक विचित्र किस्म के उदासी और खालीपन से भर जाता है। तो न्यूज में आपने सुना कि सीधे सीधे स्टेटमेंट दिया गया है कि सीबीएसई अपने को शैक्षणिक संस्थान ही माने, वो अपने को व्यावसायिक केंद्र न बनाए, व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं। स्टेटमेंट कहा है दोस्तों सीबीएसई के रूल्स भी हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, बीच बीच में थोड़ी सी सख्ती भी होती है, सरकार स्टेटमेंट भी देती है, लेकिन ये बाज कहां आ रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। अब आप सोच करके देखिए, यहां फिर से एक जो टॉपिक हमारे लिए उभरता है सिविल सर्विस के लिए, कानून है, लेकिन उन कानून का पालन संस्थान नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? दोस्तों ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, क्यों नहीं कर रहे हैं। कल मैं यहां बंसल न्यूज के एक डिस्कशन में गया हुआ था जिसमें एक फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द मध्य प्रदेश भी थे और एक पॉलिटिकल लीडर भी थे, हम तीन चार लोग एक डिस्कशन में थे खासकर सिविल सर्विस डे पर। तो मैंने यही प्रश्न उठाया था कि कानून तो है, भारत में जो संकट है वो कानूनों की कमी का संकट नहीं है, हर चीज पर कानून है और अच्छे खासे कानून है, उपयुक्त कानून है। जो सबसे बड़ा संकट है उसके इम्प्लीमेंटेशन का संकट है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। दो तीन दिन पहले इंदौर में एक दुकान के पटाखे पे दुकान में पटाखे रखे हुए थे, पीछे गोडाउन बना रखा था, उसमें आग लगी और उसमें इतने लोग जल गए, खासकर मालिक वगैरह ही जल करके उनकी मृत्यु हो गई और कितनी संपत्ति नष्ट हो गई। हिमाचल प्रदेश में एक बस गड्ढे में गिरी, 24 लोग उसमें बैठाए जाने चाहिए थे, 48-49 लोगों को ठूंस लिया गया, गाड़ी की कमानी टूट गई और खाई में गिर गई। तो अब कानून तो इनके खिलाफ है कि आप ऐसी जगह पर बाजार पटाखे नहीं रख सकते, आप ओवरलोड बस में नहीं बैठा सकते, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ये सोचने की बात है। तो एक अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स कि जो भारतीय प्रशासन की जो समस्या है वो लेजिस्लेचर की समस्या नहीं है जितनी कि वो इम्प्लीमेंटेशन की समस्या है, कार्यपालन की समस्या है। इस पर आप इस मुद्दे को केंद्र में रखकर विचार कर सकते हैं। दो दिन की छुट्टी है, अच्छा है कि इस पर आप कम से कम 400-500 शब्द लिखने की कोशिश करें, तो ये अभ्यास के लिए मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद जो छोटी सी खबर थी दोस्तों, वो नेपाल में जो मधेसी समुदाय है, अभी जो वहां का जो संविधान बना है उसमें मधेसी समुदायों को थोड़ा सा किनारे कर दिया गया है और मधेसी समुदाय अपने को खासकर भारत से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो उन्होंने अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। तो ये अब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं खासकर मधेसी जो शब्द है उस पर उधर आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। इस पर मैंने काफी विस्तार से पहले बात की है, तो जो स्टूडेंट अभी नए नए इससे जुड़े हैं तो प्लीज मधेसी के बारे में थोड़ा सा जान लें कि वो नेपाल में कहां पर रहते हैं, भारत से उनका किस तरह से संपर्क है। भारत के से ही गए हुए लोग हैं जो बाद में जाकर के नेपाल में ही रह गए और वहां के ही अब वो नागरिक बन गए हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी। अब मैं आपको कुछ तीन चार दूसरी तरह की खबरें बता रहा हूं फ्रेंड्स, जो उसी तरह से कंटेंट के रूप में इंपॉर्टेंट है, टॉपिक के रूप में इंपॉर्टेंट नहीं है। चूंकि अब इतना समय नहीं है कि मैं किसी टॉपिक को लेकर के बहुत आगे तक जा सकूं, तो वो मैं अब आपको कुछ कंटेंट बता रहा हूं। एक का दोस्तों हमारे जो संसदीय समिति है, संसदीय समिति ने अपनी एक रिपोर्ट दी है खासकर हिंदी भाषा के प्रयोग के बारे में, जिसे राष्ट्रपति जी ने स्वीकार कर लिया है। उसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जैसे कि कोई भी हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या दूसरे नेता हैं अगर वो हिंदी जानते हैं तो सबसे पहले वो हिंदी में बोलें, एयरलाइंस में जब जो एयर होस्टेस जब सिक्योरिटी के बारे में इंस्ट्रक्शन देती हैं तो पहले हिंदी में बोलें फिर इंग्लिश में बोलें, वहां अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के भी अखबार हिंदी के भी मैगजीन्स प्रोवाइड की जाए, इस तरह की कुछ रिकमेंडेशन संसदीय समिति ने दी हैं जिसे राष्ट्रपति जी ने स्वीकार कर लिया है। तो ये भाषा के ऊपर एक पॉइंट है। मित्रों जो दूसरा पॉइंट है वो है कि आपने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने श्री श्री रविशंकर जी को एक वार्निंग सी दी है और उन्होंने कहा है कि आपको जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है, क्या आपको वो सब कहने की आजादी है जो आप चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि श्री श्री रविशंकर जी ने यमुना के किनारे पिछले साल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था और उसमें पर्यावरण को बहुत क्षति हुई थी, उसको लेकर के उनके ऊपर एनजीटी ने कुछ दंड लगाया था, आर्थिक दंड लगाया था, उसका भुगतान करने से श्री श्री रविशंकर जी ने मना कर दिया और अब वो कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है क्योंकि हमने केंद्र सरकार से अनुमति ली थी, तो या तो केंद्र सरकार उसको इसके लिए जिम्मेदार है या फिर एनजीटी जिम्मेदार, कुछ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिम्मेदार है, क्योंकि बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उनसे शायद 5 करोड़ रुपए के लिए कहा था कि वो इसकी भरपाई करके अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, तो अब वो केंद्र सरकार को और एनजीटी को जिम्मेदार ठहरा रहे, तो उसको लेकर के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उनको फटकार लगाई है। चूंकि श्री श्री रविशंकर एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, तो उस संदर्भ में आप उनके इस एतराज को समझने की कोशिश कीजिएगा, खासकर आध्यात्मिक संदर्भ में। इसके बाद दोस्त इससे पहले एक घटना हुई थी, उसकी चर्चा मैं शायद नहीं कर पाया इसलिए आज उसे रख रहा हूं, कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको मालूम होगा कि ये कहा था कि जो नेशनल हाईवे में 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें हैं वो बंद हो जानी चाहिए, ये उन्होंने आदेश दे दिया था, उसको लेकर के लोगों ने काफी विरोध भी किया। इसके बाद देखिए कि क्या हुआ कि जो नेशनल हाईवे हैं अपने अपने राज्यों ने उन नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे का दर्जा देने की शुरुआत कर दी कि हम इसके नेशनल हाईवे नहीं मानते, इसे हम स्टेट हाईवे मानते हैं, ताकि कम से कम वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बच जाएं। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिया है उसके पीछे रीजन इस तरह के हैं कि जो ड्राइवर्स हैं वो रुकते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं और उससे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो शराब पी के गाड़ी न चलाएं, इसके पीछे मकसद तो ये है। लेकिन अब मकसद क्या, राज्य क्या लेकर के चल रहे हैं कि उनकी बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति होगी, इससे लोग बहुत अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, इसमें कुछ व्यवसायियों के भी अपने आर्थिक हित हैं, तो अब वो राज्य हाईवे मान करके वहां उनको मतलब बरकरार रखा जाएगा। इसका मतलब है कि उद्देश्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जो एक सामाजिक कल्याण का क्षेत्र, जबकि इसी समय आपने कुछ और भी इस तरह की खबरें पढ़ी होंगी कि महिलाएं शराब की दुकानों के खिलाफ विरोध कर रही हैं, विद्रोह का प्रदर्शन कर रही हैं कि शराब की दुकानें बंद की जाएं, तो पब्लिक ओपिनियन तो दिखाई दे रही है, तो यहां भी आपको एक बड़ा कंट्रडिक्शन दिखाई देगा कि किस तरीके से कानून का पालन और सामाजिक कल्याण इन दोनों में टकराव है। दूसरी बात, किस तरीके से जब आर्थिक हित और सामाजिक कल्याण की बात आती है तो आर्थिक हितों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है सामाजिक कल्याण के ऊपर, तो इस तरह के टकराव आपको इसमें दिखाई देंगे। दोस्तों सोनू निगम ने अभी खासकर जो धार्मिक जो संस्थान केंद्र हैं हमारे, खासकर अजा जैसे मस्जिद हैं और पूजा के जो केंद्र हैं वहां जो आवाज होती है तेज आवाज और उससे लोगों के यूं कह लीजिए शांति में खलल पड़ती है, उसको लेकर के विवाद जो छिड़ा हुआ है उसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये एक इशू है। और एक जो दूसरा इशू है मित्रों वो ज्यादा न्यूज में नहीं आया है, उसके लिए मैं आपको हिंदू का आज एक क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, हिंदू की क्लिपिंग्स है कि एक रिकमेंड की गई, एक संस्था ने रिकमेंड किया है कि भारत में इंडिपेंडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए, यह रिकमेंडेशन है। मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के लिहाज से ये रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट के रूप में, ये क्लिपिंग्स इसके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं इसका हिंदी क्लिपिंग्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस पर ज्यादा बातें अखबार लिखेंगे नहीं। तो मित्रों ये कुछ मैंने छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो कंटेंट हो सकते हैं वो आपको बताए हैं, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग का सवाल है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, आप उन्हें देख लीजिएगा। तो अब मैं आता हूं ईमेल पर, सभी ईमेल लिखने वाले अपने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, निरंजन कर्नाटक से, आनंद रावत रामनगर उत्तराखंड से, नीरज कुमार जमशेदपुर झारखंड से, मयंक निगम कोंच उत्तर प्रदेश से, माधव सिंह गया बिहार से, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, सुप्रिया पटियाला पंजाब से, अभिषेक गुप्ता साहिल कृष्ण जम्मू एंड कश्मीर से, विजेता सेन अखिलेश यादव बीएचयू से, अभिषेक सिंह अतुल सिंह चौहान सीतापुर उत्तर प्रदेश से, निशांत चौधरी और पूजा वर्मा शेखपुरा बिहार से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अब इसी के साथ ही मैं अब इजाजत चाहूंगा और वह इजाजत भी आने वाले दो दिनों तक के लिए। सोमवार को आप सबसे फिर मुलाकात होगी, फिर बातें करेंगे। नमस्कार।